भगवान का स्मरण करो, जिसे भगवान तुमको उस कुएं से बाहर कर देंगे और शत्रु की सब दूर देंगे। इसे बिना भगवत भजन के कोई भी उपाय नहीं है। जिसमें हिरण्यकश्यप का छोटा भाई मरा, हिरण्याक्ष, दोनों में से दोनों बड़े हैं, दोनों छोटे हैं, माता के गर्भ में पहले आया हिरण्याक्ष और जन्म पृथ्वी पर किसका हुआ? हिरण्यकश्यप। इसलिए एक तरफ से वो बड़ा है, दूसरी तरफ से ये बड़ा है, दोनों एक ही साथ में पैदा हुए, जमज संतान है माता पिता के। वो विष्णु के हाथों से, परादेव के हाथों से हिरण्यकश्यप जब मारा गया, हिरण्यकश्यप माने क्या? हिरण्यकशिपु, हिरण्य माने सोना, अर्थ रुपया पैसा, रुपये पैसे से ही हम जीवन में सुखी हो सकते हैं अन्यथा नहीं, ऐसा जो विचार मानते हैं उनका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष आया समझ में? हिरण्यकश्यप किसको कहते हैं? या हिरण्याक्ष जो ये समझते हैं कि रुपए के बल पर ही हम सुखी रह सकते हैं, रुपया पैसा नहीं है, अर्थ नहीं है तो हम सुखी नहीं हो सकते हैं, ऐसे जिनका विचार है उनका नाम है हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष आज जगत में 99% नाइन रेकरिंग जितने हैं सब ऐसे ही हैं जो ऐसा समझते हैं। बड़े बड़े साधु संत भी ऐसा समझते हैं, रुपए के बल से हम सुखी हो सकते हैं, रुपया पैसा नहीं है तो हम सुखी नहीं हो सकते, स्त्री छोड़ी जा सकती है, बच्चे छोड़े जा सकते हैं, सभी छोड़ सकते हैं, किंतु अर्थ हमारा बैंक बैलेंस अलग रहे, बेटी कहती हमारा बैंक बैलेंस अलग, 5 वर्ष का लड़का हो गया वो उसी समय से उसका बैंक बैलेंस चलने लगा, किसी पर किसी का विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास नहीं है। इसलिए आजकल के दिनों में अधिकांश लोग, चाहे वो साधु के रूप में हो और चाहे गृहस्थ के रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, जो रुपये पर ही अपना जीवन निर्भर करता है, भगवान के नाम के ऊपर में नहीं विश्वास करता, वो सब असुर है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अन्तं सर्व पापेभ्यो मुक्तयिष्यामि मां। जो ऐसा करने वाले हैं, हमको रुपये पैसे की जरूरत नहीं है, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारा सर्वस्व हमारी संपत्ति भगवान है, राम है, कृष्ण है। जो ऐसा समझते हैं वो देवता हैं, वो बड़े आनंद से जीवन उनका कट जाता है। हनुमान जी ने विवाह किया, कितना धन एकत्र किया बैंक में, हनुमान जी का कितना बैंक बैलेंस था, प्रहलाद महाराज जी का क्या था? प्रहलाद महाराज जी का कुछ राज्य भी मिल गया पीछे अपने बाप का, किंतु हनुमान जी कभी नहीं ग्रहण किया। ऐसा सेवक जगत में दुर्लभ है। विवाह नहीं किया, शादी नहीं किया, बच्चे नहीं, बाल, सब समय भगवान की सेवा करें, ऐसा होना चाहिए। बहुत सी बातें याद आ रही हैं जो कहूं, किंतु समय बहुत थोड़ा, इसलिए मैं पछता रहा हूं जो मैं, मुझे समय नहीं। बड़ी सुंदर सुंदर लोभमयी मैं हरि कथा आपको सुनाता हूं। हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर उसके रुंडमुंड शरीर को, शरीर कटा हुआ उसको जोड़ करके राजभवन में लाया गया। हिरण्यकश्यप के बहुत से लड़के थे, वो शरीर होने पिताजी मर गए, उनकी स्त्री थी हिरण्यकश्यप की, वो रोने लगी, हमारे पति देव मारे गए, उनके प्रजाएं करें, हमारे महाराज मारे गए, हमारे उनके जो पितामह थे वो कर गया, हमारा नाती मरा गया। इसी तरह से सभी लोग रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं और रो रहे हैं खूब जोर। हिरण्यकश्यप ने देखा जी ये तो मामला गड़बड़ है, इनको सांत्वना देना चाहिए। वो उनको समझा रहा है, अरे मैया तू क्यों रो रही है, मैं तो तेरा भी बेटा बचा हुआ हूँ और युद्ध में मरने से स्वर्ग की गति होती है, इसके लिए तू मत रो। उनकी स्त्री को समझा रहा है कि आज युद्ध में मारे गए हैं, आप मत रोइए, तो भी रो रहे हैं। उन्होंने कहा जैसे यदि रोने से भगवान वो मिल जाता है बेटा, तो ऐसा करें हम जगत के सब लोगों को बुलाएं और सभी मिल करके छाती पीटते हुए रोए खूब जोर से, आएगा चला आएगा। यदि किसी के मरने पर हम सभी विश्व के लोग एकत्रित होकर के भी खूब रोए तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा? नहीं लौट, वहां चला गया, वहां से लौट करके नहीं आएगा, फिर क्यों बेकार का रो रहे हो? हमने सुना है जब बम्बई इत्यादि शहरों में कुछ लोगों में ऐसी प्रथा है कि मरने बाद में रोना चाहिए, तो रोने के लिए एक एक आदमी को एक एक सौ एक एक हजार रुपया देते हैं कि सब लोगों को बुला करके कहते हैं ये तुम लोग रो। अरे रोने से आ जाएगा थोड़े, नहीं आ सकता, सभी रोते हैं। मैंने कहते हैं भाई रोने से आएगा नहीं, यदि रोने से आता तो मैं भी रोता। अच्छा ये बतलाओ किसके लिए रो रहे। देखो मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। एक राजा थे, उनका नाम था सुजग्य। वो अपने समय में उसके समान और कोई वीर राजा नहीं था, एक केवल था। यदि उसको हरा देता है तो भूमंडल का राजा, चक्रवर्ती राजा बन जाएगा। इसलिए उसके ऊपर में आक्रमण किया सारी सेनाओं के साथ में, किंतु बाई चांस वो युद्ध में मारा गया। शाम हो गई, युद्ध शांत हो गया। इनके सिपाहियों ने, सेनाओं ने इनको लेकर के कटे हुए सिर को और धर को जोड़ करके राजभवन में लेकर के सफेद कपड़े से ढक दिया, जिसको कहते हैं कफन, कफन से ढक दिया। और सब लोग रोने लगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सांत्वना देने के लिए वहां पर उपस्थित थे। एक छोटा सा बालक आया, 5 वर्ष का नंगा। उसने आकर के कहा, अरे भाई सब लोग रो रहे हैं, भाई किस लिए रो रहे, क्या बात क्या है, बतलाओ तो। कोई उत्तर नहीं देता। बड़े आश्चर्य की बात है, ये किस लिए लोग रो रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता। एक बूढ़ा आया, बोला जैसे बेटा तुम समझेगा नहीं, तुम खेलने जाओ। मैं तो समझता हूं, आप लोग नहीं समझते शायद, आप बतलाइए कि क्यों रोते हैं। तो ये मर गया। कौन मर गया? सुजग्य मर गया। मर गया, कहां गया, कब आएगा? जो गया तो आता है ना, मैं वाराणसी गया, मैं काशी गया, मैं अयोध्या गया, तो आएंगे ना, कब आएंगे? अरे वो वहां पर चले गए जहां से लौट करके कोई नहीं आता है। तो हमको तो मूर्ख बना रहा है, कहां जाइए तो सोया हुआ है। ये तुम्हारा पुत्र, ये तुम्हारा पति, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा सुहृद, ये तो सोया हुआ है, इसे बातचीत करो, गले से लगा लो। पति स्त्री से कहा कि इसको उठा करके ले जाओ अपने कमरे में, अपने पलंग पर सुला करके तुम भी वहां पर सो जाओ, बड़े आराम के साथ में बातचीत करो। अरे भाई ये बोलेगा नहीं, क्यों नहीं बोलेगा? अरे इसके अंदर में जो आत्मा थी वो निकल गई। अच्छा ये तो नई बात हमने सुनी, आत्मा निकल गई, शरीर के लिए नहीं रो रहे? तो नहीं नहीं शरीर के लिए, किसके लिए रो रहे? आत्मा के लिए रो रहे हैं। अच्छा आत्मा के लिए रो रहे हैं, ठीक। अच्छा ये बतलाओ कि आत्मा जो इसमें थी वो कितनी लंबी थी, ये तो बतलाओ। अच्छा वो गोरी थी कि काली थी? पढ़ी लिखी तो थी न मूर्ख थी? वो क्या खाती थी? उसको कभी देखा तो नहीं? मैंने कभी नहीं देखा। अरे कभी नहीं देखा उसके लिए रो रहा, जो उसको देखा इसके लिए नहीं रो रहा, बड़े आश्चर्य की बात है। आप लोगों ने इसके अंदर में आत्मा को देखा? जो आत्मा को देखेगा इस जगत से चला जाएगा प्रभु के पास में, उसको जगत में नहीं आना पड़ेगा। और फिर भी रोते हैं किसके लिए? अरे वो तो मरा हुआ शरीर जो पड़ा हुआ है वो अभी भी जीवित अवस्था भी मरा हुआ है। गतासु न गतासु न अनुशोचन्ति पंडिता, जो व्यक्ति है धीर है बुद्धिमान है ये शरीर के लिए नहीं रोता, किसके लिए? आत्मा के लिए विचार करता है। और आत्मा कभी न जन्म लेता है न मरता है, नहीं नंसिदंति शास्त्राणी नहीं नंदति पावक न चैनंकड़े व्यंता को न सोच अति मारुता। शास्त्र में ये सब बतलाया गया, आत्मा नहीं मरती है न जन्म होता है, इस सुख दुख से उसका कोई भी जरूर ये संबंध नहीं है। किंतु हमने समझ लिया खाते हैं तो मैं खाता हूं, ये मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इसके अंदर में रहने वाली भगवान का नित्य दास आत्मा है, जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। इस चीज को समझो। और इस जन्म में नहीं समझ लिया, लाखों जन्म में नहीं फिर समझ सकते हैं, दूसरे जोनियों में नहीं होगा, केवल मनुष्य जन्म में ही होगा। और जो मनुष्य जन्म पा करके भी यदि भगवान का भजन नहीं किया, आत्मा को नहीं जान सका, तो उसका जीवन बेकार है, फिर नहीं होगा। इसलिए वो समझा रहा है, देखो शरीर को जिसको तुमने पालन पोषण किया, जिसको पति समझा, बेटा समझा, पुत्र समझा, भाई समझा, वो तो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, इसको गोदी में ले लो, इसे बातचीत करो, नहीं करेगा। और आत्मा, आत्मा को तो कभी देखा नहीं, तो फिर उसके लिए क्यों रो रहा है? इसे रियलाइज करने के लिए, उसे उसको समझने के लिए चेष्टा करो। इसके लिए गुरु को धारण करना पड़ेगा। दिन गुरु भवन भी तरे न कोई जो बिरंच संकर्षण हो। बिना गुरु के कभी भी हम भव सागर को नहीं पार सकते हैं, न आत्मा को जान सकते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। दिन गुरु भवन भी तरे न कोई। आजकल गुरु कहने से ही बहुत से लोग हट्टी उगाते हैं, गुरु धारण करना नहीं चाहते, टीचर बनाना चाहते हैं स्कूल कॉलेजों के। किंतु जहां गुरु कर दिया था मानो पहाड़ विपत्ति का गिर गया, सुनना नहीं चाहते। कह दे ये तो दात्यानुषी है, ये पोंगापंथी है। पोंगापंथी जानते हैं, पोंगापंथी है। ये सब विचार किसने, इसे कहते हैं इसी जन्म में ही मनुष्य जन्म ला करके हम केवल मात्र भगवान को और जीव तत्व को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। गीता में अर्जुन ने इसी समझाने के लिए ये जगत को दिव्य ज्ञान दिया था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा और कृष्ण के दास हैं। उसने कहा कि देखो अच्छा, जिसको तुम बेटा कह रहे हो, जिसको पति कह रहे हो, जन्म से पहले तुम्हारे जन्म से पहले ये क्या था, तुम्हारा बेटा था? समझिए इस चीज को, हमारा मैं किसी का बेटा हूं या हमको एक बेटा हुआ, तो बेटा होने के पहले, जन्मने से पहले वो हमारा क्या था? वो तो था ही नहीं, आत्मा के रूप में था, शरीर के रूप में नहीं था। इसलिए हमारा क्या लगता है, यदि दोनों का मैरिज नहीं हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ का विवाह नहीं हुआ, तो विवाह से पहले क्या लगती थी वो पत्नी, क्या लगती थी वो लड़की? कोई था संबंध? कोई भी संबंध नहीं। और जब भी मर जाए तो मर जाने के बाद में बेटा स्त्री और पति का संबंध रहेगा, बेटा और बाप का संबंध रहेगा, वो भी नहीं रहेगा। अरे भाई एक दिन के लिए वो संबंध हो गया और बाकी पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं था, इसके लिए रोने की क्या जरूरत है? मैं बतलाऊ क्यों है? एक बात देखो, एक कबूतर था, एक कबूतरी थी, ये दोनों के बहुत से अंडे दिए, छोटे छोटे बड़े चुनमुने चुनमुने बड़े लवली उनके बच्चे हुए। एक दिन मैया और बाप दोनों बच्चों को खिलाने के लिए, अपने खाने के लिए कुछ चारा ढूंढने के लिए जंगल में चले उड़े, और उड़ करके एक नदी के किनारे एक सुंदर मंदिर में एक आम की डाल पर दोनों बैठ गए। दोनों दोनों के मुख के अंदर में चोंच मिलाकर कर बड़े प्रेम से बीती हुई अपने प्रेम की कहानी, प्रेम की बातें परस्पर बोलने लगे। आहा, तुम जब जुआ थी ना बड़ी सुंदरी थी, अरे आप भी जब युवा थे बड़े सुंदर थे, मैरिज की कोई जरूरत नहीं, विवाह की कोई जरूरत नहीं, कोई रस्म नहीं पड़ी, आज इत्यादि का भी हमन कोई नहीं किया गया, और हम दोनों बड़े प्रेम के साथ में मिले, हमारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ही सुंदर संसार, मधुर संसार है। ऐसी ऐसी बातें एक दिन की याद है, हम दोनों बड़े प्रेम से गले ऐसी सब बातें हो रही थी, जैसे कि हम लोग पति और पत्नी करते हैं, जब तलाक हो जाता है तो सब उठ जाता है। आजकल तलाक की प्रथा भारतवर्ष में नहीं थी, आजकल धीरे 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 पश्चिम की हवा भी उड़ करके भारतवर्ष में भी आ रही है, और हम भारत में भी वाले भी बाहर में जा करके आज एक नए पति को, कल दूसरे पति को, तीसरे पति को, जब तक कि 24 पति नहीं बदला तब तक वो स्त्री नहीं। और यदि उस हस्बैंड ने, पति ने यदि 24 स्त्रियों का प्रत्याग नहीं किया तब तो वो पति क्या है भला? ऐसी सब प्रथाएं चल रही है, भारत की वैदिक प्रथा नहीं, बस एक जीवन में यदि मर गया तो कोई बात नहीं। सीता जैसी पतिव्रता नारी, अनुसुईया जैसी पतिव्रता नारी, गार्गी जैसी हो, ऐसी होनी चाहिए। आजकल यह आदत सब लुप्त हो रहा है, बड़े दुख की बात। आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे, यदि इन रीतियों को नहीं पालन करेंगे तो केवल सांसारिक दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं, हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, दोनों कबूतर कबूतरी, सी पिजन एंड सी पिजन, दोनों बात कर रहे हैं एक डाल पर बैठ करके बड़े प्रेम के साथ में चोंच में मिला करके। इतने में कबूतरी ने देखा सुंदर सुंदर घास, कोमल कोमल घास, और सुरभैया हवा बह रही है, ठंडी 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 कोमल कोमल हवा बह रही है, फूल खिले हैं चारों तरफ में। देखा घासों के ऊपर में मोती जैसे चमकते हुए चावल के कुछ कण बिखरे हुए हैं,
पत्नी ने कहा, कबूतरी ने कहा, प्रिय प्रियतम, बड़े सुंदर सुंदर चावल के कण गिरे हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग सुन ले, अपने भी खाएंगे, बच्चों के लिए लेकर, ऐसा तो कभी मिलना सुअवसर बड़ा कठिन है। पति ने कहा कि देखो तुम नहीं जानती, यहाँ पर चावल आने की कोई संभावना नहीं, वन जंगल में यहाँ का बनिए की दुकान है या कृषकों का खेत है, किसानों का, यहाँ पर चावल के कण आ जाएंगे, यहाँ पर षड्यंत्र है, कोई बहेलिया जाल लगा रखा है, और जब इसे जाएगी चुगने के लिए बहेलिया तुमको अपने जाल में पकड़ लेगा और तुम्हें खा जाएगा। अरे पुरुषों को तो सब समय षड्यंत्र की भूमि, वो सब समय षड्यंत्र ही देखते हैं, मैं तो चली, ये करके फुर्र उड़ी और जाकर के घाटों के ऊपर में जाकर के धीरे धीरे एक एक चुंग रही है, आ जाओ आंख से बुला रही, आ जाओ तुम भी, और एक एक दाने को चुंग रही है। और इतने में बहेलिया ने देखा जो ये जाल में बैठ चुकी है, रस्सी खींच दी और उसके जाल में वो बंद हो, अब तो वो गिलाप कर होंगे, मरी रही मरी। पति देखा जैसे आहा, वो तो जाल में गिर गई, अब तो ये मरी, ऊपर से उड़ करके नीचे आया और उसी के पास में जाल के भीतर जहां वो पड़ी थी, बाहर से आकर के उसके अंगों में अंग लगा करके गिलाप करने लगा, हाय हाय, और मैं बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता, सूरती तू बाहर आ जाने, भीतर जाऊं कितने होना असंभव। गिलाप जब करने लगा वो खूब जोरों के साथ, पुरानी पुराने बातें याद आने लगी और उसने डकक डकक करके रोने लगा। बहेलिया ने देखा अच्छा मौका है, उसने बाण और धनुष उठाए और संधान किया और ऐसा मारा जो बीच में छाती में लगा और वो उलट गया, रक्त गिरने लग गया और हंसी हंसते हुए बड़े जोर से अच्छा हास किया, हा 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 करते हुए और ताली बजाते हुए वहां आकर के उसको पकड़ लिया और उस जाल में पड़ी हुई उसको पकड़ लिया, दोनों के पैर बांध करके यहाँ पर रख करके घर जला गया और आग पर सेक करके और उनको खा लिया। हम लोग को भी इसे शिक्षा लेनी चाहिए, कोई मर गया खूब रो रहे हैं, आत्मा के लिए कोई चिंता नहीं करते, काल उनको देखता है हंसता है निष्ठुर का सिर पर मृत्यु मंडरा रही और तू नहीं देख रहा वो रो रहा है, इसी तरह से समझो हम उसके लिए रो रहे हैं किंतु काल तो हमारे ऊपर में भी है, आज न कल न परसों न बरसों जरूर मरना है, जरूर मरेगा, इस जगत में तुमने जो कुछ कमाई किया वो तेरे साथ में नहीं जाएगा ये समझ रखो। जर्मन का हिटलर कितना रुपया पैसा और बम लेकर के गया, जब मर करके गया तो ले गया ना, नेपोलियन बोनापार्ट अपने साथ सब कुछ लेकर के गया ना, जो कुछ कमाई किया, लोगों को मार करके उनको आक्रमण करके हरा कर उनका सारा राज्य वैभव छीन लिया, किंतु हुआ क्या, रशिया के दलदल में वो फंस गया और फिर वहीं पर मर गया। सिकंदर विश्व विजयी सिकंदर, उसकी क्या दशा हुई, इसको याद रखना चाहिए, एक सुई का नोक भी यहां से लेकर के नहीं जा सकते, इसे ऐसा कोई कमाई करो जो तुम्हारे लिए दिशा और पासपोर्ट हो और तुम ये भव सागर को पा करके सहजी भगवान के दिव्य वैकुंठ लोक में और उससे भी ऊपर वृंदावन में ब्रज में जाकर के उपस्थित हो जाओ और वहां पर नित्य आनंद से न जन्म है न मरण है न सफरिंग है न शोक है न मोह है, वहां पर जो ही प्रहलाद महाराज जी ने ऐसा कहा वो बिगड़ गया, हमको तुम शिक्षा देना चाहता है, मैं तुम्हारा बाप, आई एम योर फादर एंड यू आर ट्राइंग टू टीचिंग मी, चुप हो, और को गोदी से फेंक दिया, कहीं मारो इसे, जो गुरु थे बोले नहीं नहीं अभी मत मारिए, इसको फिर से शिक्षा देकर के हम लोग इसको ठीक कर लें, वी विल गिव अगेन टीच हिम एंड अगेन ये शुड पास्ट। इसके बाद में ले गए फिर सिखाया, कुछ देर के बाद में फिर वो सीख करके आया, पिताजी ने कहा कि तुमने कुछ सीखा, हाँ कुछ सीखा, तुम्हारे गुरु जी ने साम दान दंड भेद ये चार प्रकार की ये जो नीतियां हैं राजनीति तुमको सिखलाई, इनमें से जो तुमको अच्छा लगे तो बताओ, आजकल स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, दूसरों को कैसे ठग करके रुपया ले सकते, और कोई दूसरी शिक्षा है नहीं, सीटिंग कैसे सीखें, राजनीति कैसे सीखें, ऐसा रोजगार करें जो लोगों को बेवकूफ बना करके उसका सब कुछ फेंक, यही आजकल की शिक्षा पहले नहीं था। पहले शिक्षा क्या होती थी? अक्षर की। अक्षर सबसे पहला क्या है? ओंकार। ये पहला अक्षर है, ये भगवत स्वरूप है। इस अक्षर में क्या है? अ उ म। माने अकारेण उच्यते कृष्ण, अकार। अक्षर किसको कह किस लिए कहते हैं? ये संस्कृत का शब्द है, बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है, नक्षरति इति अक्षरः, जिसका कभी विनाश नहीं है, कभी परिवर्तन नहीं है, जिसका कभी भी ध्वंस नहीं है, जिसका कभी भी जन्म और मरण नहीं है, उसको कहते हैं अक्षर, नक्षर। आ रहा है समझ में? हम जो कुछ देखते हैं वो सब खर है, खरति इति खरः, जिनका ध्वंस है, परिणाम है, अनंत में जो मर जाते हैं। ऐसा कोई जगत में है जो जन्म दिया मरेगा नहीं? अभी कल हमने देखा एक लड़की को, अभी जन्म हुआ और फिर देखा उसको जरा बड़ी हो गई, थोड़े दिन के बाद में देखा जो वो 16 वर्ष की बड़ी सुंदरी, अपूर्व सुंदरी किशोरी हो गई। कुछ दिनों के बाद में देखा जैसे वो 25 वर्ष की हो गई, उसकी शादी हो गई, और 50 वर्ष के बाद में देखा उसका दांत ढीला हो रहा है। और खुद थोड़ी देर के बाद में देखा आंख भी कमजोर हो गई, एक केस सफेद हुआ उसको निकलवा दिया, बेटे से कहा किसी से जा मरा ये केस सफेद हुआ निकाल दो, दूसरे देखा जैसे 4 केस सफेद हो गए, और थोड़ी देर के बाद में देखा जाए ये सारे केस सफेद होने लगे, और कितने वो केस को निकालेगी, और अंत में फिर देखा क्या 4 आदमी मिल करके उसे उठा करके ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं, अपने नहीं चल सकता वो, उसको खाट पर पलंग पर लिटा दिया, और 4 कहां मिल करके राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हो गया बस लीला समाप्त। ऐसा ही चलता है, हम समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वो मर गया कोई बात नहीं, इसलिए हम लोगों को ऐसा समझना चाहिए, भजन करना चाहिए, बिनु भरी भरजन भवतरीय यह सिद्धांत अपेल, सेवक सेव्य भाव बिनु भजन तरही अवतार, बिना सेवक और सेव्य भाव के, कृष्ण हमारे सिद्ध है, मैं उनका सेवक हूं, जब तक ऐसा भाव नहीं होगा तब तक भाव सागर को नहीं पा सकते। एक चीज और समझ रखिए, वेद उपनिषद शास्त्र में ऐसा कहते हैं, गणेश जी, कार्तिक जी, दुर्गा जी, ये भगवान नहीं है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान के दास दासी, इस चीज को समझिए, भगवान केवल राम और कृष्ण है, इस चीज को अच्छी तरह से समझिए, हनुमान भगवान नहीं है, शंकर भगवान नहीं है, हनुमान जी शंकर हैं, वो राम की सेवा करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए क्यों नहीं राम उनके, शंकर जी के जो आराध्य हैं, हनुमान जी के आराध्य हैं, दुर्गा देवी के जो आराध्य हैं, सबके जो आराध्य हैं, ब्रह्मा और विष्णु सबके जो मूल आदि हैं, उस कृष्ण की, उस राम की आराधना क्यों नहीं करें? इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे, जब तक कि कृष्ण और राम का, भगवान का यदि भजन नहीं किया जाए, ये सब देवता लोग मिल करके भी कोई आपको मुक्ति नहीं दे सकते, इस चीज को गारंटी रखिए, इसलिए उनको गुरु मान करके चलिए, दुर्गा को, हनुमान जी को, शंकर जी को, किंतु उन लोगों को, ये हम लोगों को समझिए, समस्त के मूल आदि हम अपने आप में ही कर रहे हैं, भागवत का एते चान सकला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तुलसीदास ने सर्वत्र उदाहरण लेकर के और व्यास जी ने उदाहरण लेकर के इन चीजों को समझाया है, इसलिए मैं आप लोगों से बड़ी नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि जगत के जो आराध्य राम और कृष्ण है उनका आप लोग सजीव भाव सागर को कर सकते हैं, इस चीज को जरूर याद रखें, यही हमारी भारतीय और वैदिक, ये संस्कृति और ये ज्ञान है, इस तरह से हम भजन करेंगे भगवान का तभी हम भाव सागर से पार हो सकते हैं। हिरण्यकश्यप इन लोग ये प्रहलाद महाराज जी उनको बतला रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाक्षत आत्मनिवेदनम, ये उन्होंने बतलाया। विष्णु, विष्णु कौन है? कृष्ण ही विष्णु, कृष्ण ही राम ही विष्णु है, और इसको भी अच्छी तरह से समझ लेंगे, सबके मूल ये कृष्ण, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इसलिए कृष्ण ही राम हुए हैं, कृष्ण ही बलराम हुए हैं, कृष्ण ही सब हुए हैं, इस चीज को समझना चाहिए। कृष्ण और राधा जी राम रूप में, वो राम और सीता जी के, इस चीज को समझिए। और भी बहुत सी चीजें हैं जो एक दिन में नहीं समझा, और समय भी प्राय हो ही आ रहा है, और प्राय 9 बज रहा है, 9:45। मैं 2-4 बातें और कहूंगा। उसने सुना, अरे विष्णु का स्मरण, विष्णु का कीर्तन ये करने के लिए कह रहा है, ये हमारा शत्रु है, पहले से मारो 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 इसे, अपना बेटा भी हो और यदि हमारा विरुद्धाचरण करता है तो उसको मारना चाहिए। ये हमारे कुल में अंगार के स्वरूप है, कुलांगार है। देखो यदि किसी वृक्ष को काटना है तो कुल्हाड़ी के द्वारा काटा जाएगा, किंतु कुल्हाड़ी में बांस का ही बेट या किसी चीज का बेट होना चाहिए, लकड़ी का, बिना उसकी सहायता से वृक्ष को नहीं सकते, नहीं काट सकते। वृक्ष काटना है तो वृक्ष की सहायता से ही वृक्ष को काटो। ये ऐसा हमारा कुलंगार, ये जन्म विष्णु इसी के सहारे से हमें काट रहा है, इसलिए इसको मारना चाहिए। यदि हमारे एक अंगुली में थोड़ा हो जाता है और उसे गैंग्रीन हो जाता है, गैंग्रीन ठीक है वर्ड समझते हैं, ऐसा हो गया, पक गया कि ये पूरा हाथ को लेकर के गला करके और हम इसे मर सकते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति इसको यहाँ से काट देता है, डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करा करके बच रहे। यदि पूरे हाथ में है तो पूरे हाथ को भी काट सकता है, पैर में हो गए तो पैर को भी काट सकता है अपने को बचाने के लिए। तो ये हमारा अंग है, पुत्र होने पर भी ये कुलंगार है, ये विष्णु का पक्ष ले रहा है, आज विष्णु का पक्ष ले रहा है, फिर विष्णु को भी छोड़ देगा, कोई भी इसकी गारंटी नहीं, जो अपने बाप माँ को छोड़ सकता है वो किसी का नहीं हो सकता, ये हिरण्यकश्यप का है, किंतु वो नहीं जानता है। हिरण्यकश्यप ये कृष्ण माता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पूर्व पिता, उसके पितामह जो ब्रह्मा उसके पिता, उसके पूर्व सबके ये पिता कौन है, कृष्ण ही सबके मूल पिता है, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए जो भगवान का भजन करता है वो अपने माता पिता और संसार के किसी का भी ऋणी नहीं होता, उसका ऋण से भगवान मुक्त कर देते हैं, इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो भगवान का भजन किया वो किसी का ऋणी नहीं है, नैम ऋणी च राजन, भागवत का किया वेद उपनिषद शास्त्र ऐसा कहते हैं, हम भगवान के ही पुत्र हैं, इस जगत में आए थे भगवान का भजन करने के लिए और हमने दूसरे को पिता बना लिया, ठीक है बना लिया, ठीक है उसका आदर करते हुए भगवान का भजन करो, उसको भी प्रसन्न रखो, किंतु मूल रखो जो भी भगवान का भजन करो। जाके प्रिय न राम भय देवी तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी जिनके प्रिय न राम भय देवी मीरा का नाम आप लोग जानते हैं, मीराबाई थी, मीरा भगवान का भजन करती थी, उसके पिता पति उसके ऊपर में वृद्धाचरण करने लगे, उसे जान से मारने की चेष्टा करने लगे, 20 दिया, बोला ये ईश्वर अमृत है, तो उसने 20 दे दिया तो उन्होंने जहर भी खा लिया और उनके लिए वो अमृत बन गया। एक सांप को पकड़ करके काला और एक टोकरी में रख करके भेजवाइए, ये तुम्हारे सालक राम जी है, इसको खोल करके पूजा करो, सोचा जो खोलेगी तो सांप काट देगा ये मर जाएगी, तो लेकर के उनको दिया मीराबाई जी को और उसने खोला ढक्कन, भजे है मारे सालग्राम जी आपकी जय हो, मैं आपकी पूजा करूं, तो वहां पर सालग्राम आ गया, सांप ना जाने कहां चला गया। तो जिनको राखे साइया मार न सकी है को, जिसको सैया प्रभु जिसकी रक्षा करता है उसको कोई नहीं मार, ऐसी अच्छे तरह से दृढ़ विश्वास रखने चाहिए हमें। प्रहलाद महाराज जी ने को मारने के लिए बहुत चेष्टा की, नहीं मार सका, अंत में फिर स्कूल ले गया, पूछा जी तुमको किसने इतने शिक्षा दी, अरे गुरु चने दिया, अभी तुम्हें कष्ट कर देता हूँ। गुरु जी हाथ करके कांपते कांपते बोले, जब प्रभु हमने नहीं किया, हमने ये शिक्षा नहीं दी, ये तो अपने स्वाभाविक रूप से भगवान का भजन करता, नहीं नारद कहीं आ गया होगा, नारद ने इसको सिखाया होगा, वो तो घर बिगाड़ना ही उसका काम है, नारद का जरूर मिला होगा, तो नारद जी मिले कि नहीं उसे, अरे वो जब पेट में मैया के थे उसी समय नारद आकर के उनको कितना बड़ा 60,000 वर्ष तक उनके माता के गर्भ में उनके लिए शिक्षा दी, इसलिए इनका संस्कार ऐसा हुआ, ऐसे ही नहीं बिना संस्कार का नहीं होता है, आजकल कोई भी संस्कार नहीं, बेटे का गर्भाधान नहीं होता है, मुंडन संस्कार नहीं, अन्न प्राशन का नहीं, आजकल मैरिज भी विवाह भी कोई संस्कार नहीं, माला बदल लिया बस हो गया, 2 दिन के बाद में से डाइवोर्स हो गया, इसलिए संस्कार होना चाहिए। यदि किसी का संस्कार अच्छा नहीं तो बेटा अच्छा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अपने माँ बाप को नहीं मानेगा न भगवान को मानेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज से जब उसने पूछा हिरण्यकश्यप किसने तुमको शिक्षा दिया, उन्होंने कहा लौकिक गुरु के द्वारा नहीं होगा, सो काल गुरु के द्वारा नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। अपने मन से भी नहीं होगा भगवान का भजन, और सो काल गुरु के द्वारा भी नहीं होगा। ये होगा कैसे? यथार्थ में वैष्णव यदि शुद्ध हो, भगवान का भजन करने वाले रियलाइज सोल हो, रसिक वैष्णव हो, उनके चरण की धूली से स्नान करने से अभिषेक करने से ही हो सकता है। बिना रजो विजय का, बिना भगवान के भक्तों के चरण की रस से अभिषेक हुआ आज तक कोई भी नहीं हो सकता है, भगवान को नहीं पा सकता। विभीषण को कैसे भगवान मिले? हनुमान जी ने कृपा करके उनको संत दिया, उनके चरणों की धूली की कृपा से विभीषण। उसी तरह से जितने भी लोग हैं, सुग्रीव कैसे मिले भगवान को? हनुमान जी के माध्यम। प्रहलाद जी कैसे भगवान को पाया? नारद जी की कृपा से। ध्रुव जी को कैसे भगवान मिले? नारद जी की कृपा से। नारद जी जगत के रियलाइज सोल है, परम भगवत भक्त है। ऐसे भक्तों का संग यदि मिल जाए तो समझो भव साधक हमने पार कर लिया। और यदि साधु संग नहीं मिला, जो कहते हैं कि सभी एक ही समान है, मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म, तत्तमसि तुम भी ब्रह्म हो, सर्वम खलु इदं ब्रह्म सभी ब्रह्म है, तो ब्रह्म बहुत से हो जाएंगे। बेटा हो गया ब्रह्म, लड़की हो गई ब्रह्म, स्त्री हो गई ब्रह्म, और लग गया झगड़ा। इन्हें ब्रह्म में ब्रह्म नहीं झगड़ता, किंतु ये सब झगड़ किस लिए? अलग अलग अकाउंट और ये सब हो रहे हैं, वो मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये सभी ब्रह्म है, तो ये क्यों होता है? इसलिए सभी ब्रह्म नहीं है, एक ब्रह्म कृष्ण है, राम है एक, और बाकी सब उनके सेवक है। ऐसा कभी ब्रह्म यदि बनने की तैयारी की, ब्रह्म होने की चिंता भी कभी की, तो एकदम भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसा मत समझो, एक प्रभु है, दो नहीं है, राम कृष्ण वामन नृसिंह ये दो नहीं है, एक ही चंद्र के एकम द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, चंद्र एक ही है, उसमें कलाएं देख रही हैं घटती बढ़ती, किंतु एक और ऊपर जब चले जाएंगे तो देखेंगे कि कोई कला नहीं, कुछ नहीं, पूर्ण चंद्र है। हम जहां पर हैं वहां से ऐसा दिखता है, आज एक कला घट गई, एक कला बढ़ गई, किंतु चंद्र में ऐसा नहीं होता, वो तो पृथ्वी की परछाई से ऐसा दिखता है। उसी तरह से भगवत तत्व एक अखंड है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दे। भक्त अपनी दृष्टि से, ज्ञानी लोग ज्ञान की दृष्टि से उसको ब्रह्म देखते हैं, योगी लोग अपने दृष्टि से उसी को परमात्मा देखते हैं, और उसी को भक्त लोग स्वयं भगवान के रूप में देखते हैं। परम रसिक सर्वशक्तिमान परम दयालु सब गुणों से विभूषित उसी को देखते हैं, और जो लोग उनको ब्रह्म के रूप में देखते हैं उनकी छाया को देखते हैं बहुत दूर, वो ब्रह्म को नहीं देख पाते। इसलिए ऐसा सोच करके कृष्ण ही समस्त अवतारों के सार एक ही तत्व है, उनका भजन करना चाहिए, अन्यथा हम भजन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एकमात्र वैष्णव की चरण धूलि के द्वारा अभिषिक्त होने करने हैं से भगवान का हम भजन करते हैं। ऐसे गुरु के आश्रय लेने से ही हो सकता है। और सो काल जैसे हम लोगों के जब हम जहां हमारा जन्म हुआ, हम लोगों में कुल पुरोहित होते थे, कुल गुरु बड़ी सिगरेट पी रहे हैं, अफीम भी ले रहे हैं, पान चिबा रहे हैं। मैंने पूछा जैसे आप गुरु हैं हमको दीक्षा देंगे तो हम आपको दीक्षा देंगे। मैंने कहा कुछ पढ़े लिखे हैं, संस्कृत जानते तो नहीं, तो अच्छा गुरु किस लिए किया जाता है? तो कृष्ण ने गुरु किया, राम ने गुरु किया, इसलिए गुरु करना। अरे किस लिए करना चाहिए ये तो मैं नहीं जानता, तो ऐसे गुरु को कर करके क्या लाभ होगा? हम जाते गुरु से नहीं, हमको जो कृष्ण को बतलाया जाए कृष्ण कौन है, आत्मा क्या है, कैसे भगवान को पाया जा सकता है, ये को जो बतला सकता है जो आचारवान हो विचारवान हो स्वयं आचरण करने वाला हो, ऐसे हम गुरु को करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बहुत घुना खोजते खोजते तर्क युक्ति उनसे किया, अंत में हम जिस महापुरुष के पास में गए, नित्य लीला प्रविष्ट उन विष्णु पार्षद भक्ति प्रज्ञान के सौ गोस्वामी महाराज, जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य थे, इन डिसिप्लिक ऑर्डर चैतन्य महाप्रभु की लाइन में राधा कृष्ण के भजन करने वाले। मैंने देखा कि हमारी सारी शंकाओं को उन्होंने दूर कर दिया और मुझको भगवान के चरणों में मुझे झुका दिया। इसी तरह से बिना सदगुरु के जो तत्वदर्शी नहीं है नहीं, नहीं पा सकता। गीता में भी ऐसा कहा ना, क्या कहा गीता में, तद्विद्धि संपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन। अरे तब तो धरती गुरु के पास में जाओ, ये जानते हैं माया क्या है, कृष्ण क्या है, जीव क्या है, ये समझने में लाना चाहिए। नहीं समझा गुरु करने ऐसी रीति है हमारे, ये तुम गुरु के बेटे हैं, इनसे हम नहीं होगा, शोकाल गुरु से नहीं हो सकता है, जो संग आचरण नहीं करता है उसने जाओ, हमारे गुरु जी गुरु नहीं है शुक्राचार्य तुम समझता है, हमारे गुरु जी कुछ नहीं जानते, तुम्हें सब जान गया, दो वर्ष का लड़का कहे हाँ मैं जानता हूँ, अच्छा तो तुमको मैं मार रहा हूँ, बतलाओ तो। इसके पहले एक बात थोड़ा सा और बतला दो, अब तो समय हो गया काफी, 9 बज गया, जाने में भी हमको 1.5-2 घंटा लगेगा, इसलिए मैं थोड़े से यही बतला रहा हूँ। एक दिन गुरु जी कहीं चले गए और प्रहलाद महाराज जी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे, खेल रहे थे, उन्होंने कहा आज खेलेंगे नहीं, आज मैं ये दो एक बातें आपसे करूंगा। उन्होंने कहा कहो तो। उन्होंने कहा कौमार आचरित प्रज्ञ, भगवान धर्मदान, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, जब तक कि कोरा कागज है, कोरा कागज समझते हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ नहीं, ऐसे ही टप पेपर ऑन विच नथिंग इज रिटन, इट इज कॉल्ड कोरा कागज। तो वैसे ही कोरा कागज बच्चे का हृदय होता है, तो वो उसको बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए। जब 60 वर्ष की उम्र सठिया जाएगी, भोजपुरी भाषा वाले लोग जानते होंगे सठियाना किसको कहते हैं, सठियाना और गठियाना एक ही बात है, गठिया पकड़ लेती है चल नहीं सकते, लठिया से भी नहीं चल सकते, यहाँ सठी आ गए और उसके बाद में वो टेढ़ा नहीं हो सकता, भले ही वो टूट जाएगा, बांस जब पक जाता है तो वो नहीं, ऐसा मूर्छा नहीं है, वो टूट जाएगा भले ही टूट जाए। इसलिए 60 वर्ष के ऊंचे वाले लोगों को उपदेश मत दो, क्यों, वो पक गए हैं, उन्होंने जो धारणा कर लिया मैं ब्रह्म हूं, उनको डिस्टर्ब मत करो, जो ये कहते हैं मैं हमारे उपास्य वो है देवता जी, ठीक है कहते हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो तुमको डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए जो जिनको कुछ श्रद्धा है उनको को, किंतु 5 वर्ष की उम्र से ही भगवान का भजन करना चाहिए। यदि कोई कहे भाई 5 वर्ष की भी उम्र बहुत छोटी है, पढ़े लिखेंगे किसी विषय में एक्सपर्ट होंगे, MA PhD करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, केमिकल हम लोग बनेंगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े मैनेजर होंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, एक सुंदर सी बीबी ले आएंगे घर में, जो हमसे मोटी अधिक न हो, कोई गुलचे ऐसे न मारते, छोटी सी दुबली पतली हो, कमजोर स्त्री हो लाएंगे, और फिर बच्चे सुंदर सुंदर होंगे और फिर बड़े आराम के साथ में जीवन कटाएंगे। इसलिए पीछे जब हम 60 वर्ष के हो जाएंगे और जब घर वाले हमें पूछेंगे नहीं, हमारी बीबी हमारे बच्चे हमारे पीठ पर झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगाना समझते हैं, पीठ पर झाड़ू से पीटेंगे, अरे ये बुरी हो गई और खांस रही है, खांस करेंगे। इसलिए कह रहे हैं जैसे जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, प्रहलाद मर गया जब बूढ़ा हो जाएगा, तो बूढ़ा होने के पहले यदि मर गया तो क्या होगा, क्या करेगा तू, बूढ़ा होने के पहले मर गया तो नहीं नहीं हम मरेंगे नहीं, अरे मरेगा नहीं, तुम्हारा बाप मरा कि नहीं, तुम्हारे मैया मरी कि नहीं, तुम बचा रह जाएगा। अच्छा ये बतलाओ 60 वर्ष का हो जाएगा तो तुम्हारी कमर टेढ़ी जब नहीं होगी तो बैठेगा कैसे, तुम्हारी कमर ऐसी, अब हम लोग तो अभी 75-76 के वर्ष की उम्र में ऐसे बैठे हुए तन करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके हरिनाम कर सकते हैं, भगवान का मेडिटेशन कर सकते हैं। और वो लोग संसार वाले मांस मछली अंडे गोश्त खाने वाले जो कोई उनका अंकुश नहीं है, कोई सदाचार नहीं है जीवन का, वो क्या होगा, 40 वर्ष के अंदर में दांत टूट टूट जाएंगे, बूढ़े जकार हो जाएंगे, डोकरिया हो जाए, डोकरिया हम समझती है ना बुढ़िया ऐसी, उस समय कमर भी सीधी नहीं होगी, तो भजन तो क्या करेगा। आज यदि सतके राम हो गया तो जय सिया राम, इसलिए पहले ही कमर मुवर नहीं करो, नहीं भैया एक बात करो, मैं कुछ धन धन कमा लूं और खुद जरा सुख भोग लूं तब, कहते हैं कि भैया ऐसे नहीं होगा, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो रुपया पैसा धन संपत्ति कमा करके और सुखी हो गया, ये असंभव, कैसे होगा, कहते हैं मुकुंद चरणम बिना क्या है, तत्प्रयासों कर्तव्यो यत आयु वाया परम, न तथा बिंदते क्षेमम मुकुंद चरणम भुजम। हम लोग सुख के लिए काम करते हैं, दुख नहीं दूर रहे, किंतु सब जितना काम करते हैं वो दुख के रूप में ही बदल जाता है। बेटा किया, जब बेटा होकर के हमको बुढ़ापे में सेवा करेगा, बेटा ने अपनी शादी कर ली और शादी करके हमको छोड़ करके दूसरी जगह चला गया, हो गया ना सेवा। कभी घर में अच्छी सी बहू आएगी, हमारे पैर दबाएगी, हमको रसोई खिलाएगी और बहू ने क्या पहले दिन झाटा उठाया झाड़ू और दिखला दिया, ऐसे सिग्नल दे दिया उसी दिन बस निकल गया। इसलिए कहते हैं बचपन में ही भगवान का भजन आरंभ कर दो, बूढ़े होने की मत देखो। यदि सुख लिखा होगा, पहले तुमने सुख का काम किया तो सुख जरूर आएगा, कोई रोक नहीं देगा। जब खुदा देगा तो छपर साड़ करके देगा। वेरी गुड स्टोरी। अब समय हो गया, हिज वॉजिंग दैट यू शुड स्टॉप। एनी हाउ, बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसी सुंदर सुंदर शिक्षा दी। क्यों, 100 वर्ष की आयु होने पर 50 वर्ष तो सोने में गया ना, 50 वर्ष तो निकल गया ना, और बचपन का 20 वर्ष लिखने पढ़ने और खेलने कूदने और शिक्षा में चल गया, 20 वर्ष और कम कर दो। और 80 वर्ष से 100 वर्ष की उम्र में लकड़ी पकड़ करके भी नहीं चल सकते, तो वो 20, 40 और 50 कितना हो गया, 90। कितना बच गया आप, 10 वर्ष। 10 वर्ष में विवाह शादी करना है, घर बनाना है, कार लेना है, बहुत सब चीजों की आवश्यकता है, तो भगवान का भजन करेगा। इतने में मृत्यु ने आकर के बिगुल बजाया, अगर चलना है अभी, मैं जरा समेट लूं, नहीं समेटने का नहीं, एक मिनट भी समय नहीं मिलेगा समेटने के लिए, बस चट रोटी और पट, एक मिनट भी समय नहीं देगा जब मरना समाप्त। इसलिए पहले से ही भगवान का भजन करो, जब ही से हमको गया कसू सुना, जैसे बच्चों को बिगाड़ दिया इसने, बुलाओ उस बात बेटे बदमाश, कहे हाथी के नीचे कुछ चलवाओ, बीच दो आग में इसे मारो, मेरी बहन बड़ी तेजस्वी है, जो जानती है उसको गोदी में लेकर के आग में चली जाए, वो मर जाएगा, बहन निकल आएगी। किंतु हुआ उल्टा, आग में जला कौन, होलका जल गई उसकी बहन और ये निकल करके चला है, नहीं मरा। उसने कहा तुमको कौन रक्षा कर रहा है, बतलाओ तो, मेरा प्रभु रक्षा कर रहा है, आपका भी बल वही है मेरा भी है। कहाँ है वो, सर्वत्र है वो, खड़ग खंभा और जितने अस्त्र शस्त्र सब में। अच्छा, इस खंभे में तुम्हारा भगवान है, बस एक मुट्ठी से मुष्टिकाघात किया हमारा, वो चूर्ण विचूर्ण हो गया खंभा, और उसमें नृसिंह रे, नम मनुष्यम नम मृगा भी नहीं, किरण भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, न जाने कांटा एक अद्भुत उसमें से निकला, ऊपर वाला मनुष्य जैसा शेर जैसा और नीचे वाला मनुष्य जैसा, सैकड़ों हाथ उसके, सैकड़ों सी और भुजाएं नृसिंह जी, और उन्होंने सांप की तरफ से पकड़ लिया गरुड़ की भांति और उसे पेट छू लिया। उसमें शाम नहीं, रात नहीं, दिन नहीं, बीच शाम, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कहां, अपने जन्मों पर, घर के भीतर नहीं, बाहर कहीं, देहली के ऊपर में, कोई महीना नहीं, मलमास, अभी मलमास, अभी अधिमास आने वाला है, नक्श अस्त्र से नहीं, शस्त्र से, नक्श से उसे फाड़ करके उसकी अतड़ियों को निकाल करके गले में पहने और हूंकार करने, मानो विश्व को जला देंगे।
नृसिंहदेव की जय, प्रह्लाद महाराज की जय।
इस तरह से उसकी लीला प्रह्लाद महाराज की जय हुई। कितने नृसिंह जी बिगड़े, पृथ्वी कंपित होने लगा, ब्रह्मा और शंकर जी आकर के बोले अपने प्रभु को शांत करो, वो डर के मारे नहीं गए, लक्ष्मी जी भी नहीं गई, प्रह्लाद महाराज जी दौड़ते हुए गए उनके गोदी में बैठ गए, प्रभु के क्रोध ने देने कहा चला, आंख से आंसुओं की धारा, प्रहलाद तुमको बहुत देर हो गई बचाने में, हम तुम हमको क्षमा करो, क्या चाहते हो, नहीं मैं बनिया नहीं हूं जो अदले बदले में कुछ चाहता, आप कहेंगे हमारे अंदर से सब मांगने की कामनाएं दूर हो जाए, मैं बस आपकी भक्ति करूं, उन्हें तभी कुछ मांगो, हमारे पिताजी का उद्धार हो जाए। अरे ये पहले हो चुका है, जिसके कुल में एक वैष्णव होगा ना, उसके ऊपर के चूही नीचे के चूही के एक ही पीढ़ी अपने आप कर जाएंगे, यदि उत्तम वैष्णव हो, और यदि मध्यम हो तो 14, और यदि कनिष्ठ भी वैष्णव हो तभी 7 हो जाता है, तो तुम्हारे पिताजी, फिर मांगो, अपने जगत के जितने दुख हैं वो सब मैं ले लूं, और हमारा जो भक्ति है उसका जो फल है सबको देकर के, सबको वैष्णव करके पृथ्वी से उनका उद्धार कर दे, और मैं जन्म जन्मांतर यहीं रह करके उसका भोग कर दूं। बेटा मैं हार गया, तू जीत गया, जो हमारा यह प्रसंग को सुनेगा सुनाएगा उसको मैं पृथ्वी से, हमारा नाम जोड़ेगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। मैं हाथ उठा करके कहता हूँ, कहते हैं जरूर सब उद्धार हो जाएगा ये कृष्ण नाम करने से, निश्चित नहीं होगा तो आप लोग परीक्षा करके देखिए। मैं भी ऐसे ही हाथ उठा करके नित्यानंद प्रभु जैसा कहते हैं, आप हरे कृष्ण कीजिए और देखिए यदि नहीं उद्धार होता तो मैं इसके लिए दायित्व होगा निश्चित अवश्य। मैं आप एक महीना करके प्याज लहसुन अंडे मांस मांस मछली ये सब छोड़ करके, दुष्ट लोगों का संग छोड़ करके पवित्र जीवन लाभ करके यदि भगवान का नाम करेंगे और यदि सब वैष्णवों का संग हुआ, निश्चित 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 रूप में हरे नाम वैष्णवी कलो नास्ते नास्ते और नास्ते और दूसरे को गौ प्रेमानंदे। हरे कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
भागवत महापुराण का अध्याय जो है सभी के बीच में रखें, साथ साथ रामायण गीता और वर्षा पात्र की जो विषय है उसका निचोड़ स्वामी जी महाराज के कितनी छोटी समय में कितनी बखूबी हम लोगों के सामने रखा है। जिस रामायण की यहाँ चर्चा हुआ है उसी रामायण में जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के अनंत रूपों का वर्णन करते हैं और जापक रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तीन पैसी के आधार को पुष्टि करते हुए और अपने अपने इष्ट देवता और भगवान की जिस रूप को जो मानता हो उस रूप को मानने की जो है तो उन्होंने भूजन हुए प्रशंसा किया है। और उसी रामायण में जहाँ पर वो श्री रामचंद्र जी को संसार का परमात्मा स्वीकार किया